जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे हेन प्रभु कोथाय गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु हे न प्रभु कोथाय गेला आचार्य ठाकुर हे कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोर एका काले कोथाय गेला गौरा नटरा एका काले पाषाणी कुटीब माथा अनले पशिव पाषाणी कु गौरांग गुणेर निधि कोथाय गेले पाव गौरांग गु से सब संगीर संगे जे कैला बिला से सब संग সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস, সে সঙ্গ না সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস, সে সঙ্গ না হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ জয় গৌর নিতায় জয় কৃষ্ণ বলরাম ললিতা বিশাখা জয় রাধে শ্যাম, জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ, জয় ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, জয় জয় গদাধর পণ্ডিত জয় গদাধর পণ্ডিত গদাধর পণ্ডিত জয় গদাধর পণ্ডিত জয় গদাধর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল, তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি, জয় जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतवर्षी श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर नेताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसके बारे में पहले सुनना चाहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के। तो आज प्रसाद नहीं है तो इसलिए थोड़ा लेट होने से भी चलेगा, कोई उठना नहीं क्लास से हैं, आज प्रसाद नहीं। तो सब पहले भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जो छह गोस्वामी वृंदावन में विशेष रूप में प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन के छह गोस्वामी पूरा भारतवर्ष में सब सर्वत्र लोग जानते हैं। वंदे रूप सनातन रघुजुगौ सजीव गोपालको। लेकिन ये छः गोस्वामी के बारे में, छः गोस्वामी के स्तर पर कोई दूसरे वैष्णव को यदि फिर सातवें गोस्वामी जो ढूंढा जाता है तो सभी वैष्णव लोग एक स्वर में एक व्यक्ति के नाम कहते हैं। वो कौन है? श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। ये अन्य गोस्वामी की तरफ कोई वैरागी नहीं थे, पूरा संन्यास आश्रम में नहीं थे, हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमहंस के जीवन बिता रहे थे, इसलिए इनको सातम गोस्वामी कहते हैं। तो भी आज इनकी तिरोभाव तिथि है, सो इनकी वैष्णव के आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान के केवल हम क्या मानते हैं, मनाते हैं इनकी आविर्भाव तिथि मनाते हैं, बस शक्ति तत्व में जो भी है उनके आविर्भाव तत्व, जैसे राधा रानी है, जो विष्णु तत्व में बस शक्ति तत्व में उनकी केवल आविर्भाव तिथि मनाई जाता है, तिरोभाव नहीं। लेकिन वैष्णव के दोनों मनाया जाता है, आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। ही रिजनशील, भक्तिमन ठाकुर कहते कि ही रिजनशील हु थिंक्स दैट वैष्णवस डाय, दाउ आर्ट इज लिविंग स्टिल इन साउंड, वैष्णवस डाय टू लिव एंड लिविंग स्प्रेड होली नेम अराउंड। वैष्णव की कोई मृत्यु नहीं होती है, वैष्णव मर कर भी अमर रहते हैं, जब तक के संसार में जीवित रहते हैं हरि नाम के प्रचार में सदा लगे रहते हैं। नित्य लय में प्रवेश कर जाते तो वहाँ भी जाकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए ये बोलना गलत है कि किसी वैष्णव के देहांत बा मृत्यु हो गया, वैष्णव की मृत्यु कभी नहीं होता है। यदि चैतन्य महाप्रभु जो प्रश्न पूछे थे किसको, रामानंद राय को, दुख मध्य कौन दुख हये गुरुतर, तो रामानंद राय ने कहे थे कि वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं। आर किसी महान वैष्णव आचार्य जब धरार से नित्रल में प्रवेश कर जाते हैं उनके विच्छेद से, अर्थात उनके संग पा, उनके लिए तो ठीक सही है भगवत धाम चल, लेकिन हमें, हम जब ये उनके संग से बिछुड़ जाते हैं तो उस जो दुख हमको अनुभव होता है उससे बड़ा दुख है संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वैष्णव के आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है। तो आज तिरोभाव तिथि है, तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो बचपन के घर के जो नाम था, आज तिरोभाव, इसलिए ज़्यादा इनके आर्ली जीव लाइफ और ये सब विषय विषय क्योंकि दोनों के बारे में बोलना है। तो इन्हें बचपन के नाम ने, इनके पिताजी माताजी कौन थे, आनंद चंद्र दत्त, इनके पिताजी थे आनंद चंद्र दत्त, माता जगन मोहिनी देवी दासी, इनके माता पिता के नाम है। ये बायापुर के आसपास में है, उला गांव, आज उसको बीरनगर कहते हैं, आज भी है भक्ति विनोद ठाकुर के जन्मस्थान, जाते हैं भक्त लोग देखने। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जन्मस्थान वही बीरनगर व उला गांव जिसको कहते हैं मायापुर के पास, तो वहीं पर उनके जन्मस्थान में जन्म वो आविर्भाव हुए थे। बचपन से इनके नाम था केदारनाथ दत्त। तो लेकिन इनकी जन्म उनकी माता अंकल के घर में हुआ था, किसके घर में, अंकल जो ईश्वर चंद्र मुस्ताफी जो थे उनके, ये बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, इसीलिए बड़े जमींदार परिवार होने के कारण उनकी माताजी प्राय अधिकांश समय उनकी उनकी घर में रहती थी अपने जन्मस्थान में। तो इसलिए उनकी माँ वहीं पर, उनकी माँ मामा की घर में ही उनकी जन्मस्थान उला ग्राम में हुई थी। लेकिन ये 2 सितंबर 1838 भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म, तो भाद्र शुक्ल त्रयोदशी संडे के, आज भाद्र शुक्ल त्रयोदशी संडे के दिन उन्होंने एक किताब लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर, दत्त वंशमाला, अपने जो स्वयं वंश के परिचय पुरा देते हैं किस कैसे है, तो वंश पूर्वजों की उसी किताब के अनुजाई वो कहते कि हम भी नरोत्तम दास ठाकुर की वही परंपरा, सेम फैमिली एंसेस्ट्री है, हैं वो कृष्णानंद दत्त, उनके जैसे उनकी दत्त फैमिली, ये भी दत्त फैमिली है। तो उन्होंने लिखते कि हम नरोत्तम दास ठाकुर की फैमिली एंसेस्ट्री बा उनके ही वंश परंपरा उसी से ही हम भी आए हैं। नरोत्तम ने इसलिए हम देखते दोनों ही महान कवि है, वैष्णव कवि नरोत्तम दास ठाकुर, फिर भक्ति विनोद ठाकुर। ये दोनों इनके और दो भाई भी थे, उनके नाम था एक के अभय कली और काली प्रसन्न, दोनों भाई थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर थोड़ा बचपन से ही, इनकी 8 महीने की जब उम्र में थे तब से उनके जंघा में एक बहुत बड़े बॉयल निकला था, बहुत बड़े वो दाग भी उनकी बात में बहुत दागा दाग की रफ उन शरीर में रह गया था। और तो बाल्य लीला ज़्यादा कहने से फिर टाइम चला जो, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर 1938 से लेकर 1952 तक उन्होंने पढ़ाई किया वही मामा के घर में रहकर। बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे, छोटे उम्र में ही जब उन 2-3 क्लास में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने अपने गांव में जो ग्रामदेवी एक चंडी का मंदिर था उनके नाम में पूरा कविता पूरा एक किताब लिख दी थी। किताब कवि जो पोएट्री लिखना है, गीत लिखना, ये एक जन्मजात लक्षण होता है, इसको कोई बनकर चेष्टा करिए प्रयास करिए कोई कवि नहीं बन सकता। शुद्ध भक्त की 26 गुण से एक गुण है क्या, कवि। अब भक्ति विनोद ठाकुर बचपन से ही कवि थे, जन्म से ही तो छोटे बच्चे थे तो तब से कविता इनके मुख से कुछ निकलता था कविता के रूप में। तो इसके बाद उनकी एक मौसा थे, काशी मौसा थे, वो कलकत्ता में रहते थे। मैंने बाल्य जीवन ज़्यादा नहीं पूरा, बाल्य जीवन फिर पूरा क्लास हो जाएगा उससे, तो इसलिए जो बाल्य जीवन बाल्य पढ़ाई लिखाई उनका समाप्त हुआ हाई स्कूल तक, फिर उनके जो अंकल थे कलकत्ता में काशी मऊसा उनको ले गए कलकत्ता में लेके वहाँ पर हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट की जो कॉलेज था उसमें एडमिट कराए, तो उसमें पढ़ते थे उनके। लेकिन उनके ही वहाँ पढ़ने का समय भी उन्होंने सो किताब लिखना उस समय से एडिट करते थे। काशी मऊसा के कुछ एक मैगजीन चलाते थे मासिक पत्रिका, तो उस पत्रिका में ही उन्होंने आर्टिकल लिखते थे और उनके सब एडिट भी करते थे। इनकी ऐसे तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता देखकर तो काशी मऊसा भी बड़ा प्रशंसा कर रहे थे इनके। उस समय में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उनके परिचय हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कई बड़े बड़े लोगों के साथ भक्ति विनोद ठाकुर के साक्षात्कार उनके सब परिचय हो गया था। लेकिन इस समय में जो कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता लगे 1852 से 1856 तक रहे, इसके बाद उन्होंने उनकी एक ग्रैंडफादर रहते थे जो उड़ीसा में केंद्रापड़ा पास में एक छोटी मंगलपुर गांव है, उस गांव में रहते थे। तो उन्होंने अस्वस्थ हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि बोले कि मैं उनको देखना चाहता हूँ, केदारनाथ को मेरे पास भेजो, मैं बहुत बड़े आसक्ति हूँ उसके, क्योंकि वो बचपन से जानते थे कि ये एक महापुरुष, वो भी बड़े ज्योतिर्विद थे, ज्योतिष थे। कहले बचपन से ही मैं इनकी जात जो जन्म पत्रिका देखा और मैं इनको जानता हूँ, एक महान अति मानव है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए उसको मैं देखना चाहता हूँ। मर जो शरीर त्यागने के समय में इनको मैं थोड़ा दर्शन कर, उसको भेजो मेरे पास। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उस समय कलकत्ता से कोई जाने गए, चलते चलते कलकत्ता से पहुंच गए कहाँ, उन्हीं ग्रैंडफादर के घर में छोटी मंगलपुर। तो वहाँ जब पहुँचे तो उनकी ग्रैंडफादर बहुत खुश हुए और वहीं बहुत दिन कुछ दिन भक्ति विनोद ठाकुर रुक गए उधर। रुक कर देखा कि उड़ीसा में सब गांव के लोगों को एक्सप्लेट करते हैं, गरीब लोगों को सब जो धनाढ्य व्यक्ति है इधर एक्सप्लेट करते हैं, उनसे धन सब लूट लेते हैं, उनके अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बड़े दया आया, उन्होंने कहा कि ये गरीबों को पढ़ाना जरूरी है, इनको सब विद्या अध्ययन करना चाहिए। लेकिन पढ़ाएंगे स्कूल तो आसपास में कोई नहीं था, इसलिए केंद्रापड़ा में स्वयं एक स्कूल खुले, केंद्रापड़ा हाई स्कूल, उसका पहला हेडमास्टर भी वही रहे, कौन हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। तो वहाँ पर लाइक गरीबों को पढ़ाते थे, उन्हें धनी धनी व्यक्ति के शोषण से उनको रक्षा करने के लिए पूर्ण प्रयास किए। और इसके बाद थोड़ा दिन के बाद उन्होंने फिर कटक में एक रेवेन्सा हाई स्कूल में वहाँ पर टीचर रहे, फिर भद्रक में एक भद्रक हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे, आस्ते आस्ते से लोगों की सदैव अन्य अन्य स्कूल में कॉलेज में ऐसे पढ़ाई के सबको पढ़ाना स्वयं पढ़ाते थे बिना वेतन में, पैसा नहीं लेते थे, सो फ्री में पढ़ाते थे लोगों को। हैं ऐसी पढ़ाई लिखाई करते करते आस्ते आस्ते उन्होंने एक पुस्तक लिखा मठस ऑफ ओडिशा। ओडिशा के जितने बड़ा बड़ा सब सब आश्रम थे सभी के बारे में आजकल के संसार की एक रूप रेखा को सामने रखकर आजकल की दुनिया के समाज के एक किताब लिखा द मठस आश्रम ओडिशा। उस समय ओडिशा के गवर्नर थे रेवंशा साहेब उनके नाम से रेवंशा कॉलेज। तो एक सज्जन थे विदेशी थे इंग्लैंड, लेकिन वो देखे कि किताब को पढ़े, अब पढ़ के बोले कि ये व्यक्ति कौन है, ये तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है जो लिखा है पुस्तक को, है तो उनको बोला है इनको मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये जो मिले इनके साथ बातचीत करके रेवंशा साहब बोले कि ये आप इनको ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम में लगाना नहीं चाहिए, ये तो कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं हैं समाज में। इसलिए उन्होंने इनको आस्ते आस्ते बहुत बड़ा पद में रख दिए, पोस्ट मजिस्ट्रेट पद में आ गए आस्ते आस्ते हैं। बोले तहसीलदार असिस्टेंट कुछ पेशकार ऐसा रहते थे, आस्ते आस्ते मजिस्ट्रेट पद में इनको देखिए कि जो काम इनको दिया जाता है बहुत निपुणता के साथ दक्षता के साथ इसको संपन्न कर लेते हैं। उन दिनों में कोई बड़े मैंने कोई इंडियन लोगों को कोई बड़ा कार्य नहीं दिया जाता था, वैसे बड़ा पोस्ट में नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर अपने योग्यता दक्षता बड़ में वो मजिस्ट्रेट पद में अधिष्ठित हो गए। और मजिस्ट्रेट पद में जब आ गए तो उन्होंने कई अलग अलग जगह पर से भ्रमण करते करते सब सारे लेकिन पुरी में आस्ते आस्ते पुरी में भी मजिस्ट्रेट पद में नियुक्त हो गए। जगन्नाथपुरी में जो मजिस्ट्रेट पद में रहे केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं साथ साथ जगन्नाथपुरी मंदिर का भी हेड मैनेजमेंट में हेड रहे जगन्नाथ मंदिर का। तभी उन्होंने उस समय अंग्रेज लोग ने इनको पुरी इसलिए भेजा था क्योंकि इनको उस समय उसी उड़ीसा में तीन आसपास में तीन व्यक्ति ही प्रकट हो गए थे, एक बोलता था मैं ब्रह्मा, दूसरे बोलता था मैं विष्णु और तीसरे बोलता था मैं शिव, जो जो भुवनेश्वर के पास में है शारदियापुर एक जगह जंगल के बीच में वो एक व्यक्ति था विशिकेशन, वो बोलता था मैं महाविष्णु के अवतार हैं और बहुत कुछ तांत्रिक सिद्धि उसके पास था, तंत्र मंत्र उसको तांत्रिक सिद्धि दिखाकर लोगों को सब पूरे इन्फ्लुएंस करके आसपास के सारे लोग उसके पास हजार हजार लोग आते थे, किसके पेट में दर्द हो रहा है कुछ हो रहा है ऐसे खाली हाथ घुमा देगा बस हो गया ठीक है, कोई बीमारी तुम्हारा कुछ भी होता है कैसे बस सब ठीक कर देता था। तो गरीब लोग सब जानते थे बोले ये तो भगवान है, बोलता था मैं महाविष्णु के अवतार हूँ, मैं प्रकट हुआ हूँ, ये अंग्रेज को सो भा निकाल दूंगा इंडिया से, सब भगा दूंगा, मैं इसलिए आया हूँ धर्म संस्थापनार्थ आए हैं। तो इन सब अंग्रेज को भगा दे, इसलिए अंग्रेज डर जाते थे, सब विदेशी लोग डरते थे तो क्या करके बोलते भगा देगा हमको सब ऐसे। तो उनको बड़े एक्सपर्ट थे भारतीयों को भारतीयों के पीछे लगा देने का है, इसीलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को लाके उसका पीछे लगा दिए, बोले कि ये संभालेंगे। अरे देखो भक्ति विनोद ठाकुर गए एक दिन, भक्तियां सरस्वती ठाकुर भी साथ में दिन लेके गए और भक्ति विनोद ठाकुर केवल अपने हाथ में भागवत लेके गए, भागवत पकड़े थे। तो उस व्यक्ति के पास में कुछ सिविल ड्रेस नहीं था, सिंपल ड्रेस में धोती कुर्ता पहन के, और जो पुलिस लोग गए थे उनके साथ वो भी सब सिंपल ड्रेस में सब गए थे। इन्होंने देखकर लेकिन वो बोल दिया, बोला अरे केदारनाथ बाबू आप आ गए हो, हैं सिंपल ड्रेस में पहनने मेरे को पता लगता है, इसे मैं जानता हूँ आप किस लिए आए हो, हैं ये अंग्रेजों की चमचा करना बंद करो, आज मैं आपको मेरे साथ आ जाओ और मैं आपको पूरे राजा बना दूंगा, भारत के पूरा भारत का राजा बनना भी ओडिशा में बनाऊंगा, नहीं तो चाहते तो पूरे भारत के ही राजा बना दूंगा, ये अंग्रेजों को सब निकालना है देश से और मेरा जो ऐसा काम चल रहा है, ऐसे बहुत कुछ कहा। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछे भाई जगन्नाथ के बारे में आपका क्या मतामत है, तो कहा कि जगन्नाथ क्या है, मैं भगवान हूं, मैं महाविष्णु का अवतार हूं, जगन्नाथ क्या है वो लकड़ी का ढेरा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए मूर्ख है, हैं, बोले ये जगन्नाथ को कह रहा है लकड़ी का ढेरा, ये भगवान है। तो भक्ति मोहन ठाकुर कहे कि इसके अरेस्ट करो, अरेस्ट कराओ इसको। मैं ये नहीं कि अंग्रेज लोग क्या चाहते, वो उसमें मेरे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो जगन्नाथ जी को जो दारू ब्रह्म स्वयं भगवान है बैठे कलयुग में हैं, जगन्नाथ जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि, शास्त्र का जो कहा गया है। और वो कृपानिधि जगन्नाथ स्वयं भगवान को ये कह रहा है कि लकड़ी का ढेरा, ये भगवान के अपने को कहता है मैं भगवान हूँ, इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर बोल के रेस्ट करो, ये भगवान को जो भी है ये भगवान नहीं है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। आस्ते आस्ते कई लोग भी आके कंटेंट करने लगे, ये अन्य अन्य सब युवती स्त्रियों को भी सब अवैध भाव से उनके साथ संपर्क रखता था और ऐसे इन लोगों को प्रताड़ित करता था। कितने कुछ कहने पर भी लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जब अरेस्ट किए, बोले केदारनाथ पहले सब समझो क्या होगा, तुम्हारे घर में क्या हुआ जाएगी देखो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को सुने नहीं, उसको अरेस्ट किए जबर सब, तो सिविल सब घिर गए इसको बांध के जबरदस्त अरेस्ट करके बैठा के गाड़ी पर लेके आए। लेकिन जब इसको अरेस्ट किए उनके घर में, उनके पत्नी बहुत बीमार, उच्च बीमार था, उनके जीव एक लड़की पूरा मरणासन्न हो गई। उनकी पत्नी कहते भगवती देवी तो कहते थे कि अरे छोड़ो इसको, इसका साथ हमको क्या करना है, हमारे सब बच्चे मर रहे हैं, हैं ये कह रहा अपने भगवान के अवतार हो सकता है, आप इसमें क्यों फंसे इसके अंदर। भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, चाहे हमारा सब कुछ चले जाए, लेके जेल में डाल दिए। बहुत दिन तक बीमार रहे भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं भी पूरे बीमार में आ गए। जिस दिन कोर्ट का डेट है था इसको लेके विचार करना, उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर बहुत टेम्परेचर आ गया, फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर मैं जाऊंगा कोर्ट में जाकर फिर इसको पूरा विचार करके इसको मैंने इसको मैंने कुछ आजीवन जेल बा कुछ ऐसे किसको किए। लेकिन वह उनके और एक असिस्टेंट था और एक जो कोर्ट में वो बोलता था, वो एक अंग्रेज था, वो कहता कि इंडिया के जो सब बड़े बड़े जोगी जो होते हैं उनका जो जोगी की तांत्रिक शक्ति सब था उनका दाढ़ी में और बाल में रहता है। बोले ये जो विशिकेशन बड़ा बड़ा बाल रखा है और दाढ़ी रखा है, इसका दाढ़ी बाल सब शेविंग कर देना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर यस बोल दिया, हाँ इसको दाढ़ी बाल सब काट दो। वो नहीं नहीं, वो पूरा चिल्ला रहा था लेकिन माने नहीं, पकड़ के दाढ़ी बाल सब काट दिए, पूरा शेविंग कर दिए। तो कुछ ही समय में भी उसका मृत्यु हो गया। कई कहते कि वो जहर खुद ही पी लिया, जो भी हो कैसे भी हो उसकी डेथ हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर छोड़े नहीं, इतने दृढ़ प्रतिज्ञा थे। और तो वो दोनों भाग्य जो बोलता था अपने को क्या एक ब्रह्मा बोलता था, वो आगरा नहीं क्या खुर्धा के पास रहता था, और केंद्रापाड़ा में केंद्रापाड़ा के पास एक तो रहता था शंकर जी बोलता था, वो भाग्य डर से भाग गए। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर का भी बहुत कुछ संस्कार किए थे। उनके राजा के समय में बहुत कुछ पैसा का हरफेर हो रहा था, तो राजा ने भी चाहता था कि भक्ति विनोद ठाकुर किसे निकाल जाए यहाँ से। भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा स्ट्रिक्टली, उन्होंने भी बहुत बड़ा तांत्रिक यज्ञ कर रहा था अपने छुपा के घर में, राजा ने सब लोग को ला के इसको भगाने के लिए केदारनाथ में है। लेकिन केदारनाथ ने जो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसके लिए भयभीत नहीं थे, बोले हमारा सारे शक्ति किसमें भागवत में है। जैसे कि उसको गए ऋषिकेशन को भागवत लेकर ऋषिकेशन के पास, वो कुछ भी कितने भी तंत्र शक्ति उनका पर फेंकता था, कई पिशाचों को भेजता था, भूतों को सब भेजता था, लेकिन वो लोग आकर फिर वापस जाए कि उसी को आक्रमण करते थे। लेकिन तंत्र शक्ति में जो आपके तांत्रिक सिद्धि जो निक्षेप करेगा, यदि वो आपका कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगा, फिर जो भेजा है उसी का सर्वनाश करेगा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो आध्यात्म नित्य सिद्ध परिकर थे, आध्यात्मिक शक्ति से निपुण पूरा शक्तिमान थे। इसलिए वो राजा ने जो तांत्रिक यज्ञ करता था भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए, जिस दिन तांत्रिक का आहुति पूर्णाहुति दिया उसी दिन उसका लड़का ही मर गया राजकुमार। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर निर्भीक थे। इनको जगन्नाथ जी के महाप्रसाद बड़े प्रसन्न था, किसको भक्ति विनोद ठाकुर को। प्रत्येक दिन उनको डाल, जगन्नाथ के जो डाल होता है कभी कभी डाल उड़ना पॉकेट में लेके आ जाते थे, हैं कुंडी के ऐसे कुंडी को पॉकेट में रख देते थे, हैं। तो पूरी में वहीं पर ही जब पूरी मैजिस्ट्रेट पद में थे, उनका क्वार्टर गवर्नमेंट क्वार्टर उधर ही था, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म स्थान है, वहीं पर उनके गौड़ीय मठ है अभी, चैतन्य गौड़ीय मठ, तो वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे। तभी फेब्रुआरी 1874 में भक्ति ने शुक्रवार का दिन फेब्रुआरी 6, 1874 शुक्रवार उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वहीं पर आविर्भाव हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर प्रत्येक दिन प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी को, हे प्रभु कृपा करके मुझे एक भक्त पुत्र दीजिए जो आपकी प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाएगा। तभी भगवान उनकी प्रार्थना सुन के उनको ये पुत्र दिए थे। भक्त उनके नाम क्या रखे, है क्या नाम बोल, एक साथ में सारे बोल रहे कुछ नहीं जोड़ रहे, फिर भी एक साथ सुन, बिमला प्रसाद। क्यों इनके नाम रखे, बिमला जी का प्रसन्न जगन्नाथ प्रसाद है, लेकिन बिमला देवी को पहले अर्पण करने से फिर भगवान प्रसाद करते, भगवान की जो भोग लगता है वो प्रसाद है, लेकिन भगवान के प्रसाद को यदि किसी महा फिर भक्तों को अर्पण किया जाता, भक्त खाने के बाद इसको कहते महाप्रसाद, भगवान जो खाते महाप्रसाद नहीं होता तुरंत, भगवान खाने के बाद फिर यदि कोई भक्त खाया उसको ग्रहण किया फिर भक्त खाने के बाद वो महाप्रसाद होता है, हैं। तो इसलिए ये ट्रेडिशन है, क्योंकि महाप्रसाद इसीलिए अवतरणित हुआ, अवतरण हुआ धरा पर बिमला देवी के कारण, तो उनकी प्रार्थना से महाप्रसाद अवतरण हुई है। इसलिए जगन्नाथ जी को ऑफरिंग करने वाला किसको पास में है, बिमला देवी के पास में ऑफरिंग किया जाता है, और वही महाप्रसाद को उन्होंने ला के अन्न प्रसन्न कराए थे, इसलिए उनके नाम रखे थे बिमला प्रसाद। तो आस्ते आस्ते भक्ति विनोद ठाकुर फिर पुरी में कुछ दिन रहे, लेकिन कई उनकी एंटी से लोग पब्लिक भी हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति था जो कि सहजिया टाइप का व्यक्ति था, बड़ा कि वो चला दिया, वो दूसरा कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण जप जप हरे कृष्ण हरे राम भजन नीताय गौर राधे श्याम, हमारे बाजू में ही सुमठ इधर है उस साइड में है दो, तो वो लोग ने बड़ा प्रसिद्ध भी हो गए थे, और जब हरिदास ठाकुर की समाधि आज भी वो लोग कबाद कब्जा करके नित्यानंद प्रभु का जन्मस्थान भी उनके अंडर में है, कई जगह हो, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़ा बड़े होने लगे हैं, तो उन्होंने उनको विरोध करने लगे, पूरा स्कूल में यंग होने लगे, उनके साथ लड़ाई करने के लिए चले जाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर उनको शांत कराते थे, ऐसा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कई पुस्तक लिखे हैं उनके अगेंस्ट सहजिया, इसलिए उसी समय उन्होंने 13 प्रकार की सहजियाओं की सुगंती किया है, आउलो बाउलो करता भजा सखी भेकी है चूड़ाधारी गौरांग नागरी सब के हैं, तब ये सब सहज यह है। जब ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के लिए कहे है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस मूल महामंत्र को छोड़ के ये सब अलग अलग अपने मनमाने ढंग से कुछ मंत्र बना के उसको करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थोड़ा उत्तेजित होने लगे, उनके साथ पूरा इनका भी एक ग्रुप हो गया, उनका भी एक ग्रुप हो गया, हैं दोनों बीच में फिजिकल फाइटिंग जैसे होने लगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर आस्ते आस्ते उनको भेज दिए बंगाल में, जाओ तुम बंगाल जी मायापुर में रहो है। तो जो भी है भक्ति विनोद ठाकुर आस्ते आस्ते फिर बंगाल की देर पर उनको ट्रांसफर हो गया, फिर वहाँ आने लगे। ये 1882 में कलकत्ता में घर बनाए हैं भक्ति भवन, जो बनाते थे वो हम पर एक उनको शिला खुदाई किया था, उसका कूर्म शिला मिला, और कूर्म शिला उन्होंने किसको दिए पूजा करने के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कूर्म शिला दिए पूजा करने के लिए। और इसके बाद उन्होंने कुछ सरकारी कार्य में गए थे, ने तीर्थ भ्रमण में निकले थे, तीर्थ भ्रमण आते आते वृंदावन में आ गए, आकर वृंदावन में सारे भ्रमण किए, नगर राधा कुंड के पास में जमीन लिए, बोले कि यहाँ से प्लान बनाए कि मैं भविष्य में आकर यहाँ रहूँगा, कहाँ राधा कुंड के किनारे रहूँगा, आज भी घर है भक्ति विनोद ठाकुर के, राधा कुंड परिक्रमा रास्ते में थोड़ा अंदर में भक्ति विनोद ठाकुर, तब उन्होंने की भजन भी लिखा है, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, बड़ा भजन है। लेकिन कहे कि ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ए सब छोड़त पराण हराऊं, है ये सब छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा ब्रज में, आए थे कोई व्रत छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं, यदि ये छोड़ जाएगा मेरे ब्रजवास छोड़ जाएगा तो ये शरीर भी मैं धारण नहीं करूंगा, ये सब छोड़ तो प्राण हराऊं, ऐसा कह के रहे थोड़ा दिन घूमने के। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट कार्य, फिर इनको जाना पड़ेगा, फिर वापस गए। लेकिन कहे कि मैं दोबारा आ जाऊंगा कि यहाँ निवास करूंगा, ब्रज में वास करना, जमीन तो खरीद के रख लिया इधर राधाकुंड में। उस समय जब यहाँ पर थे, यहाँ पर बहुत डकैती हो रहा था, आजकल भी सब वो सबको बड़ा कुछ डकैत लोगों को बहुत दमन किए थे, उन्होंने यहाँ पर मजिस्ट्रेट को मिले मथुरा में, मिलके उनके सब बोल के सारे डकैत लोगों को सब ठंडा किए थे इधर। लेकिन गए फिर कुछ गवर्नमेंट काम में तो गए थे, वहाँ से फिर उन्होंने हमारे वहाँ पर है नित्यानंद प्रभु की जन्मस्थान, जिन्हें जाने के पहले एक सिटी आता है तारापीठ है, वहाँ आता, वहाँ के प्रसिद्ध तांत्रिक बामा बामा खेप आए, तांत्रिक मंदिर है आज बहुत सुंदर बने हुए, तंत्र तांत्रिक जो कहते हैं कि सिद्ध पीठ है। लेकिन वहाँ पर उस एक गवर्नमेंट काम में गए थे तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे उनके जो गवर्नमेंट को जो गेस्ट हाउस था, तभी इनको स्वप्न में देखे, प्लान बना रहे थे, उसने सोच सोच के सोए कि कैसे यहाँ नौकरी थोड़ा दिन में छोड़ दूंगा, जाके राधाकुंड में रहूँगा भजन करूँगा। रात को चैतन्य महाप्रभु सपने में आए, गौरांग महाप्रभु सपने आए, कहे कि देखो केदार तू भूल गया तुझे किस लिए भजाया था इस संसार में है, अभी तक मेरे जन्मस्थान लोगों को पता नहीं है, मेरा आविर्भाव स्थान लोगों को पता नहीं है, और तू नवद्वीप और ब्रजधाम में क्यों भेद देखने शुरू कर दिया है, तुझे कई कार्य मेरे लिए करना है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा के माध्यम से ही सारा जगत के लोगों की उद्धार होगा, तू इसको भूल गया, तुमने क्या प्लान बना लिया जाए कि राधाकुंड में रहने के लिए, नवद्वीप मंडल के बारे में पहले सोचो। आए भक्तिनाथ ठाकुर बड़ा स्वप्न बड़ा चमक गए, बोले क्या अच्छा महाप्रभु की इच्छा ये सब है, क्योंकि वो भगवान के नित्य परिकर है, कौन है वो, कमल मंजरी है, ललिता सखी के ग्रुप में है, वो कमल मंजरी है, लेकिन ये संसार के प्रभाव ऐसा है, इसलिए महाप्रभु उनकी सचेत कराए। टूट के आकर फिर सोचे कि अच्छा, आके फिर निर्णय किए कि अभी से मैं और जाऊंगा नहीं, फिर जो कैंसिल कर दिए जो आने थे राधाकुंड आने पर, सोचते बोले अभी मैं यहीं रहूंगा, यहीं नवद्वीप में रहकर नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन यहीं नवद्वीप में रहकर फिर नवद्वीप मंडल के बारे में चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान के बारे में बहुत कुछ मैं सब इसका डेवलपमेंट के लिए रहूंगा। लेकिन इसलिए नगर जो रिजाइन दे रहे थे तो गवर्नमेंट रिजाइन नहीं ले रहा था, बोला नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचता था कि इतने बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति को छोड़ के हम बहुत बड़ा खेती होगा, हानि हो जाएगा हमारा, तो इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध किया, नहीं कैसे भी हो अब नौकरी करते रहो, नौकरी मत छोड़ो, तो कहे कि मुझे फिर पास में ले जाओ मायापुर के पास में, कृष्णनगर में ही मुझे सेवा दो, मेरे जो पोस्ट रखना जो कुछ नौकरी देना वहीं, बोले तो पहले तो राजी नहीं होता, तो फिर देखे कि वो भी स्ट्रिक्ट है छोड़ ही देंगे, फिर उन्होंने कृष्णनगर अपॉइंटमेंट करके रख दिए, कृष्णनगर जो मायापुर के पास है, तो कृष्णनगर में मजिस्ट्रेट रहे, वहीं डिप्टी मजिस्ट्रेट रखे, लेकिन वो आने के लिए वो रहे ना कि मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट क्वार्टर में रहने के लिए तैयार नहीं थे, कहाँ रहना चाहते थे, गोद्रुम हैं, गोद्रुम द्वीप में रहना चाहिए, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, गोद्रुम रूप में देखे कि सब नवद्वीप में नौ द्वीप में गोद्रुम द्वीप किसके लिए फेमस है, कीर्तन के कीर्तन के लिए है, तो वहीं से नित्यानंद प्रभु नामहट्ट के प्रारंभ किए। भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि मैं भी वहीं से रहकर प्रचार शुरू करूंगा, वहीं से अच्छा रहेगा नवद्वीप, गवर्नमेंट देखे कि पैर ये भाई मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा उधर गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो गवर्नमेंट फिर वहां से उनके घर से कृष्णनगर तक जाने के लिए उनके उनके ऑफिस में रेलवे लाइन लगा दिए थे, वो छोटी लाइन उसी के लिए लगाया था। किसके लिए? भक्ति विनोद ठाकुर प्रत्येक दिन वो जो छोटी ट्रेन में बैठकर जाते थे कृष्णनगर तक। अभी तो छोटी ट्रेन को उठा के सो बड़ा पटरी लगा रहे। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर वहीं जब रहते थे, रह के वहीं अपना घर बनाए, जहाँ भी घर बनाते थे भक्ति विनोद ठाकुर उसका नाम रखते थे स्वानंद सुखद कुंज। क्या नाम? स्वानंद सुखद कुंज। ऐसा नाम क्यों रखते थे? क्योंकि ललिता सखी के कुंज के नाम है। यहाँ भी उनके नाम वही, जहाँ भी भक्ति विनोद ठाकुर घर बनाते वो ललिता सखी के ग्रुप में ही कमल मंजरी थे, इसलिए स्वानंद सुखद कुंज। वहीं रहकर अपने किताब को लिखना और सब कुछ प्लान बनाना, कैसे क्या चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान कैसे कहाँ पर है, लोगों को पता ठीक से नहीं था। सहजिया लोग तो नवद्वीप में और जन्मस्थान मानते थे, लेकिन भक्ति रत्नाकर जो पढ़े, उन्होंने भक्ति रत्नाकर में देखे कि लिखा हुआ कि नवद्वीप माझे मायापुर नाम ग्राम तथा ही जन मिले न गौरचंद्र भगवान। नवद्वीप मंडल में एक गाँव है उसका नाम मायापुर, और उसी मायापुर गाँव में ही गौरचंद्र भगवान के जन्म हुआ। और ये भी लिखा है कि ये पूर्व तट पर, गंगा के पूर्व तट पर गौरांग महाप्रभु की जन्मस्थान है। तो वो जो नवद्वीप जो मानते थे सहजिया लोग, जो नवद्वीप मानते थे, नवद्वीप तो पश्चिम तट पर है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर देखे नहीं, गवर्नमेंट सा सारा पूरा रिकॉर्ड सब निकाल के एक देखे, हाँ बड़े चिंतित हो क्या जो गौरांग महाप्रभु जन्मस्थान मुझे निरूपण करना है। तो उन्होंने देखे कि सब देखे, फिर वो फिर भी चलते थे, इसी रास्ते में जाते थे। एक दिन रात को उन्होंने जब माने रात्रि में उठकर छात के ऊपर जपा कर जपते थे से माला लेकर, हठात देखे कि उससे बलाल डिघी माने जहाँ पर जन जोगपीठी है उसके आगे चांद कांजी समाधि, उसे बलाल डिघी उस एरिया पूरा पूरा आलोकित है, जैसे कोई बड़ा सिटी है ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि इतनी आलोकित आकाश पूरा। भक्ति विनोद ठाकुर के लिए यहाँ पर आलोक कहाँ से आ गया, रात्रि में ऐसे ही इतने लाइटिंग दिखा रहा है इस साइड में। सुबह सुबह उठकर जब करते करते फिर उसी रास्ते में गए जय बालालडीघी पास ने, वहाँ क्रॉस कर वहाँ लोगों को पूछे, बोले नहीं ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं। फिर उन्होंने आके देखे कि बाहर जो वापस आ रहे थे चलते चलते जहाँ पर अभी जोगू पीठ है वहीं पर देखे थे कि रास्ता साइड में बहुत बड़ा तुलसी गार्डन है। हैं इस पूरा लैंड पूरी लैंड है केवल तुलसी 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 भरा हुआ है। तो पूछे भाई ये गार्डन किसका, ये बगीचा किसका तुलसी का? तो लोग बोले कि ये तो एक मुस्लिम का है। तो बोले बोलाओ इसको, उससे मजिस्ट्रेट को बहुत डरते थे लोग। सुबह आ गए तो बोला ये तो मुस्लिम आ गया। बोले बाबू बोला रहे आए, बोले तुम मुसलमान है तुम ये बगीचा पूरा तुलसी का गार्डन क्यों बना के रखा है? बोला बाबू ये बेकार का लैंड है, मैं कितने भी जब कोशिश करता हूँ ये तुलसी की कितना तरह उखाड़ के फेंका हूँ आए, लेकिन मैं जो भी और इसको अच्छा से चसता हूँ चस के फिर दूसरे बीज से डालता हूँ कुछ भी नहीं उठता है, जो भी बीज डालता हूँ केवल तुलसी उठता है, हमेशा तुलसी बागान बन गया है, अपने आप बनता है, इसलिए बेकार के लैंड छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया इसको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ वो अपने आप ऐसा हो रहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलोगे इसको बेकार लैंड है तो फिर हमको दे दोगे लैंड? बोला ले लो बाबू, आप थोड़ा बहुत जो देना है दे के ले लो। बोला भक्ति विनोद ठाकुर बोले अच्छा। तो दिव्य दृष्टि से समझ गए कि यही जगह ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है, यहाँ पर दूसरे कुछ नहीं उगता है केवल तुलसी ही उगता है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने आकर देखिए पब्लिक में ऐसा कहना तो मेरे बात कोई सुने, लेकिन उस समय जो सिद्ध संत थे वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, लगभग 142 साल तक के धर्म धरा पर थे, तो बड़े प्रसिद्ध थे नवद्वीप में, और जो वृंदावन के सारे वैष्णव लोग ने जानते कि सिद्ध बाबा के रूप में उनकी बड़ी प्रसिद्धि था, सभी लोग इनको वैष्णव सर्वभौम के रूप में मानते थे, सम्राट के रूप में वैष्णव सम्राट। तो भक्ति विनोद ठाकुर उन्हीं के माध्यम से उनको पहले से मिले थे, उनके साथ संपर्क था, इनको ही अपने शिक्षा गुरु रूप में मानते थे। यदि वो भक्ति विनोद ठाकुर दीक्षा गुरु विपिन बिहारी वो नहीं मानता था कि जन्मस्थल ये जो भक्ति ये जो जोगपीठ जिसको आविष्कार किए भक्ति विनोद ठाकुर उसको मानता था जन्म से, वो स्वजयम के साथ था। तो भी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास गए और सारी घटना कहे। और भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बोले कि आप आज हम एक बड़े बहुत बड़े नाम संकीर्तन के प्रोसेशन लेके जाएंगे हजार हजार लोगों के साथ, हाँ हमारा इच्छा हो कि आप भी चलिए हमारे साथ। भक्ति ने गुरु ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज राजी हुए, तो उनको बैठने के चलने के और खड़ा होने की शक्ति नहीं था, ऐसे पूरे कोबड़ ऐसे ही बैठे थे, नीचे मुख करके बैठते थे। उनके एक बिहारी लाल एक ब्रजवासी सेवक था, उनके एक टुकड़े के अंदर ऐसे कपड़ा डाल के ऐसे उनके अंदर अच्छा से बैठा दिया और इनको सिर में कहीं जाते थे तो सिर में लेकर जाते थे अलग अलग जगह, सिर में तो उसको लेके चले कीर्तन प्रोसेशन के बीच में। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र के जो कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं शामिल थे, सारे लोग बहुत जोर जोर से कीर्तन करके रहे। जब उसी स्थान पर पहुँचे है, पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले नहीं कुछ, लेकिन वो स्थान में पहुँचते ही तुलसी गार्डन जहाँ से था कीर्तन पहुँचते जो जिनको खड़े होने की भी शक्ति नहीं था, ऐसे ही भक्ति ने जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पूरे उछल कर प्रकाश में कूद गए हैं, कूद के पूरा उनको नीचे आए, गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल, जोर जोर से कहने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है इसलिए कहते गौरव आविर्भाव भूमिस्तंग निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्रील जगन्नाथाय ते नमः। वो निर्देश कर दिए, ये स्थान ही मेरे गौरांग का जन्म स्थान है, आविर्भाव स्थान है। तो इसलिए सभी लोग हरि बोल कहे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर निरूपित कर दिया, ये स्थान ही गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान है, यही जोगपीठ है। आई जगन्नाथ मिश्र सचिका जन्म प्रकृति में हाँ से खुदाई करने से वो सब मिला, कई सब प्रमाण से मिला है। अधोक्ष विष्णु की मूर्ति जो उन्होंने पूजा करते थे जगन्नाथ मिश्र के, बहुत कुछ। तो इसी प्रकार उन्होंने उस मंदिर को बनाने के लिए वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान में जो मंदिर है बनाने के लिए क्या वो आनंद बाजार पत्रिका केदारनाथ ने पूरा एडवर्टाइजमेंट निकला कि यहाँ के मतलब चैतन्य गौरांग महाप्रभु के मंदिर निर्माण करने के लिए जन्मस्थान पर जोगपीठ पर केदारनाथ बाबू हैं जो मजिस्ट्रेट है, तो उन्होंने जाएंगे द्वार द्वार पर भीख मांगते थे जाकर सबको, मुझे थोड़ा मंदिर निर्माण, लेकिन ज़्यादा नहीं लेते थे, हर फेमी हर घर से एक रुपया लेते थे एक एक रुपया सब लोग देते थे, सोला के फिर चांदा उठे, फिर वो मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किए थे, बाद में भक्ति सुरेश ठाकुर से कंप्लीट किए थे। तो भक्त गौर गदाधर ने उनके जो आराध्य देव थे कौन, गौर गदाधर, जुगपीठ में भी देखोगे उनकी जो भजन कुटीर देखो स्वरूप कुंज में है वहाँ भी देखोगे गौर गदाधर। तो कहते क्योंकि राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ही कलि युग में किस रूप में आए हैं, गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण और गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने पुरी में भी एक कुटी बनाए, भक्ति कुटी, जो अभी इस्कॉन के अंडर में तो है, लेकिन वो भक्ति भजन कर पता नहीं कुटी भजन कर रहे कि नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर वहीं हरिदास ठाकुर के सामने समाधि के सामने कुटिया बना के वहाँ प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेते थे। उनके कई मैंने है तो कार्य लीला है, लेकिन सारा मैं नहीं बता रहा हूँ, गदाधर पंडित जी फिर बोलाना। तो उन्होंने वहाँ पर एक कुटिया बना, छोट भक्ति कुटी बना के वहाँ भजन करते थे। अंतिम 4 साल जो था उनके, 4 साल के अंदर में बातचीत नहीं करते थे किसे, हैं बातचीत करना बंद कर दिए थे, पेपर रखते थे, कोई इमरजेंसी ज़्यादा है कुछ लिख के दे देते, नहीं तो किसी मिलते नहीं थे, बातचीत नहीं के 3 दिन रात केवल जपा करते थे, भगवत नाम भगवान ने नाम जपते थे। और वहीं पर भक्ति कुटी भी है जगन्नाथ, बाद में कलकत्ता में आ गए कुछ काम में, कोई विशेष इमरजेंसी होने से वो वहाँ से फिर आते थे। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर के जो इनकी इनसे हमको सीखना विशेष रूप में डेली स्केड्यूल, वो इतनी बड़े व्यस्त आदमी होते हुए भी अपने समय को कैसे उपयोग करते थे हैं। बड़े 7:30 बजे लगभग बिस्तर में जाते थे, 7:30 से 8 के बीच में सोने के लिए जाते थे, फिर 10 बजे उठ जाते थे 2 घंटा हैं। मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनता था, उन्होंने कहते कि भक्ति विनोद ठाकुर 8 बजे सोते थे, 12 बजे उठ के लिखते थे, लेकिन ये 7:30 8 बजे सोते थे, फिर इसकी बात उठ जाते 10 बजे से बैठकर 10 से 4 केवल बैठ के क्या करते थे, लिखते थे। सो गोस्वामी लेटर मैंने जो इतने सारे पुस्तक, क्योंकि 100 पुस्तक उन्होंने लिख के गए हैं, इतनी कर्ममय जीवन में, गृहस्थ जीवन में 10-10 बच्चे थे उनके हैं, फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ दो बात में शादी के, फिर वो इतनी बड़े व्यस्त जीवन में रहकर मजिस्ट्रेट के पद में 6 घंटा वहाँ जाता था, लेकिन फिर भी इतनी व्यस्तता के साथ लाखों नाम जप कर फिर इतनी पुस्तक रात भर बैठकर किताब लिखते थे हैं। ऐसे ऑर्डिनरी किताब नहीं, उनकी किताबें बड़े महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे गौड़ीय वैष्णव लाइब्रेरी में जो देखा जाता। तो उन्होंने किताब लिखते थे 4 बजे सुबह 4 से 4:30 तक थोड़ा सा आधा घंटा थोड़ा सा आराम करते थे, इसके बाद स्नान करके फिर जप मंडला की बैठ जाते थे हैं, 4:30 से लेकर 7 बजे तक चांटिंग करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करते थे, फिर 2.5 घंटे कंटिन्यूस जप करने के बाद 7 बजे उठकर एंसर कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ एंसर जो उनका कोई पत्र पत्र आता था उठकर बैठकर डिक्टेट करते थे उनका जो सेक्रेटरी को, सब लेटर का आंसर देते थे। 7:30 से 8:30 तक कुछ रिलीजियस बुक थोड़ा रीडिंग करते थे और दूसरे, फिर इसके बाद 8:30 बजे विजिटर जो मिलने के लिए आते थे उनको रिसीव करते थे, 8:30 से लेकर 9:30 तक विजिटर उनको मिलते थे, यदि कोई नहीं आता था स्वयं प्रश्न उत्तर करते थे, कुछ प्रश्न स्वयं पूछते थे और स्वयं उत्तर करते थे, जैसे जैव धर्म आप जो पढ़ोगे भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म केवल प्रश्नोत्तर टाइप का है, प्रश्नोत्तर टाइप का है, तो इस प्रकार केवल क्वेश्चन स्वयं पुट करते थे स्वयं उत्तर भी बोलते थे। 9:30 से 9:45 तक ब्रेक स्नान करके फिर ब्रेकफास्ट लिटिल रेस्ट लेते थे, 9-15 मिनट ब्रेकफास्ट लेकर फिर कोर्ट में चले जाए, 9:55 में कोर्ट से निकलते थे, अपने घर क्वार्टर तो ही था, बस 9 फिर 10 बजे कोर्ट में, 10 से 1 बजे तक कोर्ट में रहते थे, 1 बजे फिर घर में आते थे लंच लेते थे लंच, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच प्राय इनके समय केवल दो चपाती, 1 पाव दूध और 1 सब्जी होता था, इसे खा के तो फिर वो लंच लेते थे, लंच में आके 1 बजे आ जाते थे और लंच लेके फिर वो फिर जाते कोर्ट टाइम फिर 2 से 5, 10 से 1 फिर 2 से 5, 6 घंटा कोर्ट, 5 बजे वापस आके तो 5 बजे जो आते थे आज के फिर ट्रांसलेशन सांस्कृत बुक को सब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, जो सांस्कृत लिटरेचर कुछ तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे, डिक्शनरी रख के सेक्रेटरी को बैठा के फिर 7 से 7:30 तक स्नान करके एक फ्रेश कर फिर शुरू हो गया, फिर 7:30 से 8 बजे तक रेस्ट करते, फिर 10 बजे नहीं सुबह फिर उठ जाते थे, कितने बजे 8 से सोते 10 बजे, बस 2 घंटा रेस्ट करते थे उसके बाद बैठ के लिखना है, निद्रा आहार विहार आदि बिजित हो गोस्वामी के लेवल में, सप्तम गोस्वामी इसलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार इनकी कर्ममय जीवन हम देखेंगे, देखो इतने कहते हैं लोग, हम बोलते हैं समय नहीं होता हमको जप करने के लिए, करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन आप देखो भाई भक्ति विनोद ठाकुर कैसे अपना जीवन को बिताते थे, इतनी कर्ममय जीवन, इतनी व्यस्त रहे जीवन में, फिर उन्होंने 100 पुस्तक लिखने के लिए उनके पास टाइम कहाँ से आया, 100 पुस्तक लिखे और इतनी कुछ जो कुछ किए हैं, और नामहट्ट उनका विशेष एक अवदान है नामहट्ट, अब ये नामहट्ट प्रचार जो देख रहे हो इसकी भक्ति चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में कौन प्रारंभ किया था, नित्यानंद प्रभु तो प्रारंभ करके गए थे, लेकिन अभी मॉडर्न आजकल के दिन में जो हम देख रहे हैं नामहट्ट इसको कौन स्टार्ट किया, भक्ति विनोद ठाकुर नामहट्ट है, ये उन्होंने लिखे भजन भी बहुत नामहट्ट भजन उन्होंने लिखे हैं, नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, प्रभुर आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन পাতিয়া ছে নাম হট জীবের কারণ, কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়িয় নাচার, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রা, নদিয়া গো দ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়া ছে নাম হট জীবের কার। বড় ভজন মে গা পড়া তো এই প্রকার নামহট্টা কু নামহট্ট বি উনে শুরুয়াত কিয়ে হ্যাঁ সুরভি কুঞ্জ ওই পাশ মে হ্যাঁ ভক্তিমন ঠাকুর ঘরে উসকে থোড়া আগে যান সে সুরভি কুঞ্জ যাহা পর নিত্যানন্দ প্রভু স্টার্ট কিয়ে থে নামহট্ট, উসি স্থান পর ভক্তিমন ঠাকুর নে ভি আপনে নামহট্ট হেড অফিস বনায়া, ওহাঁ পর কুছ দিন রহে ভি ভক্তিমন ঠাকুর আর ওই সে ফের প্রচার কার্য কু আগে বড়ায়ে, এসলিয়ে নামহট্ট কে মাধ্যম সে প্রচার আর নবদ্বীপ মন্ডল নবদ্বীপ মন্ডল কা পরিক্রমা আজ ভি দেখি উনোনে পরিক্রমা কেবল গাইড বুক ভি উনোনে লিখে ভক্তিমন ঠাকুর নে হি লিখে হ্যাঁ নবদ্বীপ মন্ডল পহলা গাইড বুক আর ওই ওই সে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা কিন্তু মহাপ্রভু কে এসব উনকো নির্দেশন থা তো এসলিয়ে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা ভক্তিমন ঠাকুর কে কি কেবল নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা কি মাধ্যম সে হি পুরা বিশ্ব হি হ্যাঁ ভগৎধাম কু ওয়াপস যা সকতে হ্যাঁ তো এসলিয়ে সময় কু কবি ও দুরুপযোগ নেই করতে থে, যদি পকেট ওয়াচ ওয়াচ উনোনে হাত মে নেই বাঁধতে থে লেকিন এই পকেট ওয়াচ রাখতে থে, সময় কা এক সেকেন্ড ইধর উধর নেই হোগা, যো টাইম ফিক্স হ্যাঁ এক এক কাম কে লিয়ে ইতনা টাইম বস ইস টাইম এসে পুরে টাইম কা ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ। ভক্ত বিনোদ ঠাকুর কে যো নামহট্ট ভক্ত কে লিয়ে বিশেষ ও কহত স্বয়ং আপনি কিতাব মে লিখে হ্যাঁ মে নামহট্ট কা নাম কা হাট হ্যাঁ মে স্বয়ং ঝাড়ুদার আপনি কে রূপ মে আপনি ভজন মে ঝাড়ুদার কে রূপ মে ও স্বয়ং কো প্রস্তুত করতে হ্যাঁ আর কে কি যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব কেবল হি নামহট্ট কু অর্গানাইজ কর সকতা হ্যাঁ নামহট্ট প্রচার কু আগে বড় সকতা হ্যাঁ, যদি ও স্বয়ং আচরণ শুদ্ধ নেই হ্যাঁ নামহট্ট প্রচার কু আগে নেই বড়া সকতা, তো কে কি সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং ভক্তি ঠাকুর কে কি আর সাত্বিক আহার হোনা চাইয়ে আর রেগুলেটরি প্রিন্সিপল কড়াই সে পালন করনা চাইয়ে আর আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রভুপাচি ভি ও আয়ুর্বেদিক মেডিসিন হ্যাঁ কবি নিকলে এলোপ্যাথিক মেডিসিন কে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন নামহট্ট প্রচারক মস্ট বি টেক আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, সাত্বিক আহার আর শুদ্ধ জীবন উচ্চা বিচার আর যো আর্নিং লাইভলিহুড ভি রিলিজিয়াস ওয়ে মে হোনা চাইয়ে, রিলিজিয়াস ওয়ে মে ধার্মিক ধার্মিক মার্গ পর ধার্মিক ভাব সে সৎ মার্গ মে উপার্জন করনা চাই হ্যাঁ, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ইয়ে সব ভিক্ষা মাগ কি আপনি পোষণ করনা চাই হ্যাঁ, সন্ন্যাসী মাধুকরি করিকে আপনি মেনটেন করনা চাই আর ড্রেস যো নামহট্ট প্রচার মে ড্রেস আশ্রম কে অনুযায়ী সবকু ড্রেস পেহনা চাই, মাথা মে তিলক হোনা চাই কণ্ঠি হোনা চাই যো জিস আশ্রম মে আশ্রম কে মর্যাদা রাখি আশ্রম ও ড্রেস ভি পেহনা চাই আর রুলস বহু কিছু রোল দে ন্যাচুরালি স্পন্টানিয়াসলি তিলক লগানো এই বাধ্যবাধকতা স্পন্টানিয়াসলি এসে ন্যাচুরাল তিলক ধারণ করা কণ্ঠি ধারণ করা হ্যাঁ কথা চান্ট এন্ড বি হ্যাপি বাত মে মহাপ্রভুপাজি নে এসকো প্রমোট কিয়ে হ্যাঁ প্লিজ প্রভুপাজি কহতে থে কি প্রকৃত মে আধুনিক মডর্ন ওয়ার্ল্ড কা হ্যাঁ ফাদর অফ দি কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস মুভমেন্ট প্রকৃত মে কোন হ্যাঁ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রভুপাজি নে সেই উনকো ইতনে উনিকো হি উনোনে সারা ক্রেডিট দিয়ে কি প্রভুপাজি জানে কে পহলে ও দেখে কানাডা মে ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি কে লাইব্রেরি মে রখা হুয়া হ্যায় টিচিংস অফ লর্ড চৈতন্য হ্যাঁ কেই পুস্তক কেই জায়গা পর প্রভুপাজি কু মিলা হ্যায় তো বলে প্রভুপা ইয়ে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সব যে ইংরেজি মে কুছ পুস্তক লিখে থে ইনকো সব বিদেশ মে লাইব্রেরি মে সব ভেজতে থে হ্যাঁ ইহাঁ সে লাইব্রেরি মে ভেজতে থে ইনোনে হি প্ল্যান করকে গয়ে কি কহে থে কি পৃথিবী মে জিতনে ভি সারে অন্য অন্য দেশ কে লোক ইয়ে নবদ্বীপ ধাম মে পধারেঙ্গে আর ইহাঁ কে ইন্ডিয়ান লোক বা বাঙালি লোক কে সাথ গৌড়িয়া বৈষ্ণব কে সাথ মে সারে দুনিয়া কে লোক হ্যাঁ হাত উঠাকর সভি লোক জয় গৌর হরি হরে কৃষ্ণ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। एक दिन ये हरे कृष्ण की ध्वनि पूरा दुनिया में व्यापेगा। एक व्यक्ति आएगा जो ये मैसेज को, चैतन्य महाप्रभु वाणी को सफल करने के लिए पाश्चात्य जगत में जाएगा। कौन है व्यक्ति? चलो प्रभुपाद जी आए, प्रचार किए, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि एक अद्भुत मंदिर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर वैष्णवों की शहर बनेगा। जो कुछ उन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड की गए थे सब आज साकार हो रहा, सफल हो रहा। तो ये सब इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर हमारे आचार्य परंपरा में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। इन्होंने प्रभुपाद जी कहे ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इन्होंने सब स्वप्न देखा था, ये सब होने वाला है, ये सब होगा, अक्षर अक्षर से सच निकल रहा है। तो आज इनके तिरुभाव तिथि हैं, इसलिए हम उनके चरण कमल में विशेष प्रार्थना ज्ञापन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा यदि होगा फिर हमें आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर मध्यान्ह लीला में प्रवेश कर गए थे। आज के दिन कहते कि शरीर कहाँ त्याग गया ठीक से, कही कलकत्ता में शरीर थे, फिर इनको ले के गए थे उधर, बाद में समाधि दिए थे स्वरूपगंज में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। इनके तिरुभाव ने संक्षेप में बल दिया इनके बारे में, इसकी बात अभी कौन है? गदाधर पंडित, गदाधर पंडित हैं। गौड़ गौण दीपिका में लिखते हैं कि कृष्ण ने कवि कर्णपुर ठाकुर कि श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी सह श्री गदाधर गौरवल्लभ पंडिताख्यक। जो राधा रानी का है, जो राधा प्रेम रूपा है, जो राधा रानी के यह पूरा वृंदावनेश्वरी, स्वयं वृंदावनेश्वरी जो थे वही ही गदाधर पंडित जो गौरवल्लभ गौरांग महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, तो गौरव पंडिताख्य कह, इनको पंडित कहते। किनको? गदाधर पंडित। ये गदाधर पंडित रहा, इसलिए उनकी साधारण दृष्टि से हम कहते कि राधा रानी के अवतार हैं। कोई कहते राधा रानी के तेज, इनके जो शरीर के ज्योति तेज की अवतार, तो कोई कई प्रकार की मतावत देते, लेकिन यहाँ कहते कि यह पूरा वृंदावनेश्वरी वही राधा रानी का ही प्रेम रूपा है, राधा प्रेम के स्वरूप ये हैं गदाधर पंडित। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि प्रकृति में गदाधर पंडित इसलिए भूमिका ले रहे थे कि गदा कृष्ण ने राधा रानी स्वयं जानती है उनके पूर्व लीला में वो कैसे कैसे अभिनव। गौरांग महाप्रभु तो कृष्ण है लेकिन राधा रानी का अभिनय कर रहे थे, ये ड्रामा कर रहे थे कि राधा रानी के जैसे भाव को, राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आस्वादन करना, राधा भाव आस्वादन करना चाहते थे। लेकिन ये जो स्वयं राधा रानी होता था, उनके पास में गदाधर पंडित थे, वो जानते थे कहाँ पर कैसे रोल करना है परफेक्ट। इसलिए गौरांग महाप्रभु के पास में रहकर इनको सब समय कहीं कुछ मिस्टेक है तो वो बताते थे ये ठीक ये है ऐसा होना चाहिए हैं, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर की मतामत हैं। तो सर्व पांडित्य साराख्यं प्रेम रत्न विभूषणम माधवात्मजंग वंदे वंदे राधा गदाधरम। राधारानी ही गदाधर के रूप में, पंडित के रूप में आए, जो कि प्रेम रत्न के आभूषण जो था उनके जो विभूषित हुए थे, और समस्त पंडितों की भी पंडित थे, माधव मिश्र की पुत्र थे, माधव मिश्र और उनके माता की जो माता जी के नाम था रत्नावती हैं, माता जी रत्नावती इन गर्भ में ये जन्म लिए थे। तो इस प्रकार गदाधर पंडित शक्ति तत्व में आते हैं, पंचतत्व में, पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्ति रूप भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप है, भक्त स्वरूप नित्यानंद, भक्त अवतार अद्वैताचार्य, भक्त शक्ति गदाधर, और भक्त स्वयं नारद मुनि के अवतार सुभाष ठाकुर। तो इसलिए तो राधा रानी का अवतार होने के कारण निताय दक्षिण निताय चांद बामे गदाधर, गदाधर पंडित सदा वामोभाग में रहते थे, किसके? गौरांग महाप्रभु की। बचपन से ही इनकी बात में जो माधव मिश्र आके नवद्वीप में रहने लगे, ऐसे बेल्टी ग्राम उनके बांग्लादेश से तो रहते थे पहले, लेकिन बाद में आकर यहाँ नवद्वीप में गंगा किनारे रहने के लिए इधर आए, तो बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत अच्छे संपर्क था, किसके? गदाधर के। दोनों एक परस्पर को न देखने से हैं रहना, कोई कोई कहते कि उनके जन्म भी एक ही साल में हुआ था, लेकिन कई कई जगह में कहते कि उनके जन्म प्रकृति में गदाधर पंडित उनसे 6 साल छोटे थे, बड़ा कोई के कहते नहीं सेम डेट में उनके जन्म, मैंने सेम ईयर कम से कम उनके जो आविर्भाव हुआ था गदाधर और गौरांग महाप्रभु। लेकिन साधारण दृष्टि में कई अन्य स्थान में कहते कि नहीं 1486 में तो महाप्रभु जन्म हुए थे और इनकी 1492 में इनकी आविर्भाव हुई, इसलिए थोड़ा कई अलग अलग मतामत हैं। तभी बचपन में इनको कृष्ण कथा श्रवण में, साधु संग करने में बहुत रुचि था, किनको? गदाधर पंडित। कोई भी संत आ रहा था नवद्वीप में, उनको जाते थे मिलने के लिए, उनसे बैठकर कथा सुनते थे, उनकी सेवा कुछ करते थे, तो इसलिए उन्होंने नवद्वीप में ईश्वरपुरी के भी, ईश्वरपुरी एक बार पधारे थे जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने, ईश्वरपुरी के पास में डेली जाते थे नवद्वीप में, जाके उनकी जो कुछ अच्छा जो कुछ सेवा के मौका मिलता था, सारे सेवा करने के बाद फिर उनके साथ में बैठकर बहुत हैं प्रेम से उनको कुछ सुनते थे, बोलते थे, कुछ प्रश्न पूछते थे, कुछ सुनने के लिए उत्सुक होकर बैठते थे। ईश्वरपुरी इनको एक किताब उन्होंने लिख रहे थे हैं, श्री कृष्ण चरितामृत कुछ लिखे पुस्तक, उस किताब को बैठकर उनको ही गदाधर पंडित बैठा कर पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सुनते थे, पढ़ते थे और सुनते थे। कदा कदा कभी कभी गदाधर पंडित पूरा वो रोमांचित हो जाते थे, आंख से अश्रु बहने लगता था, हैं जोर से चिल्लाते थे इनको देखकर, ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न होते थे कि भविष्य में महान संत हैं, भक्त बनेगा, ये तो कोई भगवान के नित्य परिकर है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार भक्तों को मिलना, बार बार जाते थे भक्तों, कोई भी शुद्ध भक्त आता था तो मिल लेते थे। एक बार उनके मित्र था कौन, मुकुंद दत्त, वो जानता था कि गदाधर को साधु को मिलने में बड़ा आनंद आता है, तो पुंडरीक विद्यानिधि दूसरे संत भी पधारे थे नवद्वीप में, इनको वृषभानु जी के अवतार भी माना जाता है, बापो बापो कहते थे चैतन्य महाप्रभु। तभी वो आए थे नवद्वीप में, उनका घर तो एक बांग्लादेश में था, लेकिन यहाँ भी नवद्वीप में उनके घर रखे थे, बीच में आते थे। और नवद्वीप में जब ये एक बार गदाधर को लेकर मुकुंद पहुँचाए उनके पास में, देखिए पुंडर की विद्याधि बहुत बड़े उच्चे आसन में बैठे हैं, एकदम सिंहासन जैसे राजा महाराज लोग बैठते हैं, कोई राजकुमार बैठते हैं सिंहासन में, और दोनों साइड में दोनों एक पंखा झूला रहा है, एक क्या चामर डुला रहा है, सामने टेबल है, सब एकदम राजकीय सब परिपाटी था। और आके जब ये गए, कपड़ा भी ऐसे पूरा रेशमी कपड़ा, पूरा सिल्क बहुत कॉस्टली कपड़ा पहने, टर्बन भी बांधे थे, उसमें एक पंख भी डाले थे, पंखे जैसे राजकुमार जैसे पंख डाल रहे, पंख डाल के रखे थे, बहुत एकदम बैठे थर्ड पार्ट में जैसे लग रहा है कोई महाराज बैठा है, राजा बैठे जैसे। तो इनको देखकर इनके मन में थोड़ा विकार आ गया, किसका? गदाधर पंडित। ये आज मुकुंद तो मुझे मजाक उड़ाने के लिए लेके आया इधर है क्या, ऐसे वैष्णव है तो आचार भी ऐसे कुछ, अवश्य तिलक तो है, तिलक देख रहे, कंठी देख रहे, लेकिन ये क्या राजा महाराज की तरह आचरण, ये सब क्या हो रहा है? पंखा चामर डोला रहे कोई है पा, तो इसको देख कर थोड़ा विकार आ गया। मुकुंद समझ गया इनकी भावना को, मन को ये गदाधर क्या सोच रहा है। तो मुकुंद दत्त बहुत अच्छे गाने वाले थे, तो उन्होंने तुरंत भागवत के एक श्लोक आवृत किए हैं, ओहो बकियं स्तन काल कूटम जिंघाशया प्याद प्यसाधि लेभे धात्री गतिम उजितम किमन्या कंगवा दयालु शरणं ब्रजेम। ये श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि का उनका उनका पगड़ी का कहाँ गया, उनके ड्रेस का ड्रेस को पहन से
उसे इतनी ऊंचा आसन से नीचे गिरे, नीचे गिर के पूरा धूली धूसरित हो गए। बाप रे कृष्ण रे, कहाँ है मैं कृष्ण, मरे प्राणनाथ कहाँ है, इतने हैं रोने लगे, अश्रुओं की धारा बहने लगा। हाँ रोते रोते गड़ा गड़ी देते, अद्भुत अष्ट सत्य की विज्ञान लक्षण से प्रकट हो गया। इनको देखकर गदाधर बोला कि अरे ये इतनी बड़ी महाभागवत वैष्णव है, मैं इनके बारे में क्या क्या गलती सब कर लिया, क्या क्या सोचा, तो इसीलिए उन्होंने तुरंत ही बोले इसका प्रतिकार नहीं करूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, वैष्णव अपराध से मेरी संपूर्ण भक्ति नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गदाधर पंडित तुरंत ही मुकुंद को कहे कि देखो मुकुंद में ऐसे ऐसे ये इतनी बड़ी महाभागवत वैष्णव के बारे में मेरे मन में ऐसे गलत चिंतन आ गया, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे किसी गलत व्यक्ति के पास ले आया है, कैसे इसे मुक्त होऊंगा ये अपराध से, वैष्णव अपराध से वही मुक्त कर, यदि मैं फिजिकली कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन मन में तो मेरी विकार आ चुका था। तो मुकुंद ने फिर बोले चिंता मत करो, अच्छा है जो अपराध करते गदाधर कहे कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यदि मैं इनके शिष्य बन जाऊंगा तो मेरे सारे अपराध ही नहीं, उन्हें अवश्य मेरे अपराध सब उनके पास मैंने सब इसका प्रतिकार हो सकता है। तो बाद में जो प्रकृतिस्थ हुए पुंडरीनाधि विद्यानिधि, इनको मुकुंद कहा कि गदाधर ऐसा ही सोच रहा है, ये महान चैतन्य महाप्रभु अति प्रिय पार्षद है और इनके मन में ऐसा ही चिंतन आ रहा है, सोच रहा है कि आपका ही शिष्य बनने के लिए। गदा तब पुंडरी विद्यानिधि कहे कि ऐसे ही रत्न है, बहुत भाग्य से जन्म जन्मांतर से किसको प्राप्त होता है, मैं अवश्य इनको शिष्य रूप में स्वीकार करूंगा। तो गदाधर पंडित जाकर महाप्रभु से चर्चा, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कही ठीक है पुंडरी विद्यानिधि को तुम गुरु रूप में स्वीकार करो। तो इस प्रकार पुंडरी विद्यानिधि के दीक्षा गुरु कौन थे, गदाधर पंडित के दीक्षा गुरु थे पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। जो भी है तो उससे फिर गदाधर पंडित जब भी चैतन्य महाप्रभु को कोई भी किसी प्रकार के संकीर्तन लीला में सदा भाग लेते, सभी भी उनके साथ में रहते थे महाप्रभु के। लेकिन बचपन में गौरांग महाप्रभु बड़े नटखट थे, सब लोग जानते, सब कुछ छिड़ते थे। गदा एक स्कूल में पढ़ते थे, गंगादास पंडित के टोली में विद्यानगर में। तो ये भी गदाधर ही पढ़ता था, गदाधर न्याय के स्टूडेंट थे, न्याय के बारे में पढ़ते थे, व्याकरण ही पढ़ते थे। तो उनको एक बार सब कुछ छिड़ते थे, गदाधर पंडित सबसे जान बुझ कर उनसे थोड़ा दूर चले जाते थे, उनके साथ में तर्क वितर्क में नहीं आते थे। लेकिन एक दिन सामने सामने आ गए थे गौरांग महाप्रभु, पकड़ लिए दोनों हाथ, बोले गदाधर कहाँ जा रहे हो, आज छोड़, आज मैं तुम कुछ पूछूंगा, बता इसके आंसर बताना, बोलो मुक्ति का डेफिनेशन क्या है, न्याय पढ़ रहा, बोलो मुक्ति का डेफिनेशन क्या है, तो जितने भी आंसर दिए सारे आंसर को एक एक करके सो काट दिए, कौन गौरांग महाप्रभु, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो बाद में कहे क्या तुम करें, अत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति कहते, यही तो हम टीचर से पूरा सुना, बोला नहीं ये भी नहीं, महाप्रभु इसको फिर खंडित किए, बोले जाओ पढ़ अच्छा से पढ़ के फिर आना, दोबारा पूछूंगा। गदाधर पंडित तब से उनसे दूर रहते थे, बोले ये है उनके पास में जाने कोई फायदा नहीं, ये सब समय मैंने कोई भी कुछ आर्गूमेंट देगा, 50-100 आर्गूमेंट, जितने आंसर बोलेगा काट देंगे, फिर दूसरे उसका जगह पर दूसरा आंसर प्रतिष्ठित कर देंगे, उसको यदि हाँ बोलोगे बोलेगा नहीं ये भी ठीक नहीं है, या तो फिर दूसरा। तो फिर गदाधर पंडित इसीलिए कहते कि तुम सोचते थे मन में, मैंने भगवान को प्रार्थना करता था कि प्रभु ये यदि कृष्ण भक्त बन जाएगा ये गदाधर ये निमाय तो कितनी अच्छा होगा हमारा संकीर्तन मोमेंट में नवदीप में, आप कृपा करो प्रभु इनको कृष्ण भक्त बना दो, गदाधर भी प्रार्थना करते थे बचपन में। तो इसलिए एक दिन सची माता के घर में ने गदाधर पंडित हाथ है गदाधर आए थे, गौरांग महाप्रभु अभी दीक्षा लेकर आ गए थे, कहाँ से का ने गया से दीक्षा लेकर ईश्वरपुरी में वापस आए। तो आज आने के बाद दीक्षा लेके उनके सारे अंग में अष्ट सती के विकार भक्ति के सार लक्षण शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकटित हुआ। तो इसलिए कई प्रकार के लोग कई प्रकार के कहने लगे महाप्रभु के बारे में बोलते थे। एक बार बड़े प्रेम से बिहोल होकर गौरांग महाप्रभु हा कृष्ण कृष्ण कहाँ है कृष्ण कृष्ण कर रहे थे हैं। तभी गदाधर पंडित कहे कि कृष्ण कृष्ण तो आपके अंदर में है, मेरे अंदर में कहाँ, आपके हृदय में है ईश्वर सर्वभूतानंग। तो महाप्रभु ने पर नाखून लेकर ऐसे हनुमान जी से फाड़ के पूरा सीताराम को देखा, ऐसे पूरा फाड़ रहे थे, कहाँ है कृष्ण कहाँ है, पूरा दाग होने लगे, इतने रोने। लेकिन सची माता पूरा है व्यस्त हो गई, ये क्या क्या कर रही है, फाड़ देगा अभी छाती को फाड़ रहा। तो फिर गदाधर को देखे, गदाधर कह के कृष्ण अभी बाहर चले गए, अभी आने वाले। फिर महाप्रभु शांत हो गए हैं, बोले अच्छा कृष्ण बाहर अभी आने वाले चिंतित। सची माता बोला कि ये बड़ा बुद्धिमान लड़का है। बोले देखो गदाधर, तुम हमेशा रहना मेरे गौरा गौरु को अकेला कभी नहीं छोड़ना, सब समय गौरांग के साथ रहना, जहाँ भी कहीं भी चलना जाना घूमना फिरना खाना सब समय मेरे गौर गौर के साथ निमाय के साथ तुम रहना। तो हमेशा जहाँ निमाय ना जहाँ गौरांग वहाँ पर गदाधर रहते थे। गौर की गदाई की गौर, किसके गदा किसके गौर है, गदाई की गौर कहते नीताय गौरांग कहते। लेकिन जो माधुरी जरस के सारे भक्त होते हैं मनोबदीप की कही, जैसे भक्ति मनोहर ठाकुर गदाई गौर गौर गदाधर। तो अद्वैत आचार्य बैठकर सालग्राम पूजा करते थे गंगा किनारे, सालग्राम में तुलसी डालकर गंगा जल डालकर भगवान को आवाहन करते थे। तुलसी देखिए गोपती में तंत्र में श्लोक है, तुलसी दल मात्रेण ने जले ने जले ने चुड़ुके नवा विकीड़ते तदात्मान भक्तभ्य भक्तवत्सल। तो उन्होंने नारायण शिला रखकर पूजा करते थे हैं, पूजा करते थे कई सालों तक। लेकिन उन्हें पता नहीं था कौन गौरांग है, कि ऐसे कौन भगवान आविर्भाव हो गए गौरांग महाप्रभु। जानते थे यदि, फिर भी बोले थे यदि मेरे प्रभु तो मेरे को आके परिचय देगा। तो गंगा किनारे बैठकर वो गंगा के दिख को मुख करके वहीं आशी छोटे सिंहासन में सालग्राम को बस स्नान करके पूजा करते थे। महाप्रभु गए, निमाय और गौर गदाधर दोनों गए उनके पीछे खड़े हुए, पूजा कर रहे थे पीछे खड़े हुए। उस दिन सालग्राम जब पूजा करने के समय जब ध्यान करते थे, उनको ध्यान में पूरे भगवान के स्वरूप हैं साक्षात कृष्ण प्रकट होते थे ध्यान में, गदाधर पंडित के नहीं सॉरी इनके अद्वैत आचार्य को। उस दिन जब ध्यान में बैठ के देख रहे हैं, देखते तो गौरांग उनके सामने केवल कौन आ रहे थे, ये निमाय पंडित गौरांग आ रहे थे सामने। जितनी बोले ये क्या है, ये लल्ला बहुत नटखट बदमाश लड़का है, ये क्यों आता सामने ऐसा। लेकिन देखिए ये सामने आँख बंद कर तो फिर वही आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ व्यतिव्यस्त होकर ऐसे घूम के पीछे देखे तो खड़े हैं, पीछे खड़े गौरांग। तभी उन्होंने समझ गए, बोले मेरे ध्यान में आ रहा मैंने यही कृष्ण है, कृष्ण की जगह पर यही ध्यान में आ रहा है। वो समझ गए, मैं जिनको प्रार्थना किया था इतने दिनों से सालग्राम में तुलसी और गंगा जल डालते डालते, ये वही है। गदाधर पंडित खड़े थे, उनको घूम गए सालग्राम की तरफ पीछे करके इनकी गौरांग की तरफ देखने लगे। तो और सब जितने भी तुलसी गंगा जल जो अभिषेक सालग्राम करते, सालग्राम के बदल में इनके चरण को अभिषेक करने लगे, गौरांग के चरण अभिषेक करें, उन्हें तुलसी चढ़ाने लगे चंदन तुलसी। गदाधर पंडित पूरा जीभ को काट के देखे क्या हो रहा है, बोले हे सर्वनाश कर रही हुई लड़का का है, ये तो निमाय पंडित निमाय है, तो आप क्या कर रहे हैं, इतने बुढ़े आदमी है आप, ऐसे इनके चरण में क्यों तुलसी चढ़ा रहे गंगा जल। अद्वैत आचार्य कहे कि गदाधर अभी थोड़े दिन में तुम पता चल जाएगा मैं ये किस लिए इसके चरण में तुलसी डाला और गंगा जल अभिषेक करके तुलसी क्यों इसके चरण में डाला। सालग्राम को पुटली बांध दिए, पाठ के सीधे भाग गए कहाँ, शांति शांतिपुर है। तो कुछ समझ नहीं, गदाधर पंडित बाद में इनको पता लगा है अद्वैत आचार्य किस लिए इनके चरण अभिषेक करके इनके चरण में तुलसी डाल कर गए, क्योंकि वो कहे कि यदि चले गए तो ये मेरा प्रभु तो आपने बुलाएगा बाद में, थे गौरांग महाप्रभु फिर भेजे रामाय पंडित को जाके बूढ़ा को लेके आओ, कहाँ से शांतिपुर से है नाड़ा बूढ़ा को लेके आओ। इसलिए इस प्रकार सभी कार्य में जहाँ पे जो भी काजी के दमन करने के लिए जो विराट संकीर्तन पार्टी निकला था, उसमें भी हजार हजार लाखों संख्या में लोग जा रहे थे, उनके साथ भी महाप्रभु के बाँव भाग में रहे कौन, गदाधर दक्षिणे नित्यानंद प्रभु। गदाधर पंडित सब समय
गौरांग के दोनों साइड में रहकर इनके संकीर्तन में इनको प्रोत्साहित करवा उनको सहायता करते थे। और सबसे महाप्रकाश लीला जब हुआ शिवासंगर में गदाधर पंडित बाँ भाग में खड़ा होकर इनको बेटल नट पान उनको जुगाते थे खाने में। और तो इस प्रकार सारे लीलाएं कई जो ड्रामा भी महाप्रभु ने करते थे उस ड्रामा में, एक ड्रामा में तो स्वयं रुक्मणी रुक्मणी देवी चंद्रशेखर आचार्य ने नंदन आचार्य घर में का ड्रामा हुआ था, उसमें ये गदाधर पंडित रुक्मणी देवी के अभिनय किए। महाप्रभु जो सन्यास लेने के लिए जो चार व्यक्ति केवल कहे थे कि हम सन्यास मैं सन्यास लेने वाला हूँ, क्योंकि वो निमाय पंडित में जो स्कूल खुले थे पढ़ाते थे, तो आस्ते आस्ते एक लड़का ने थोड़ा कई लड़के विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि ये सबको बोलते थे हरे कृष्ण मंत्र गाओ, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कराते थे और स्वयं क्या करते थे एकांत में हो जाते थे, तो क्या गाते थे गोपी 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 ललिता विशाखा ललिता क्या सब गोपियों के नाम लेते थे गोपी गोपी जपते थे। तो एक दिन पूरा भावावेश में महाप्रभु थे, भावावेश में थे कि गोपियों की स्मरण कर रहे थे राधा के स्मरण कर रहे थे, ये पहुंच गए एक लड़का बोला ये क्या कर रहे गोपी गोपियों इनले से क्या मिलता है हरे कृष्ण मंत्र बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो तुमको मुक्ति मिल जाएगा, गोपी गोपी बोलने क्या मिलेगा। महाप्रभु गुस्से में थे, उठे के पूरे सीधे उसको दंडा पकड़े उसको मारने के लिए भागे, पूरा है भागे तो बहुत दूर चला गया, भागे जाके सारे और दूसरे बच्चों को कहा अरे निमाय पंडित पिटाई करने वाला लाठी लेकर आया। अब सभी लोग क्या काठी हो गए कहे क्या आज तो ये क्या है, वो भी ब्राह्मण घर का लड़का है, हम भी ब्राह्मण घर के से लड़के हैं, हम कुछ कहे हैं ना क्या, हमको क्यों मारेगा, दोबारा आएगा ना लाठी लेके हम सब मिलके इसको दंड पिटाई करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु कहे कि देखो मुझे खांसी हो रहा है, पिपिल का मेडिसिन बनाया था लेकिन वो उस मेरा भलाई करने के बदले में मेरे रोग को और वृद्धि कर रहा है, इनका मैं भवसागर में ऐसे बद्ध जीवन को उद्धार करने के लिए हरे अवतीर्ण हुआ था, लेकिन ये सब ऐसे ही मेरे चरण में अपराध करेंगे तो सब नर्क में जाएंगे, जन्म जन्मांतर नर्क में पड़े रहेंगे। इसलिए महाप्रभु ने निर्णय किया कि मैं क्या लूंगा संन्यास ले लूंगा, कि उन समय में समाज में सन्यासी की बड़े आदर करते थे, कोई भी सन्यासी कोई भी हो सन्यासी को देखने से ही प्रणाम करता था। तो इसलिए महाप्रभु कहे कि मैं चार व्यक्ति को सबसे पहले बताया, उनमें से एक थे कौन गदाधर नित्यानंद प्रभु मुकुंद और सत्य गदा नित्यानंद मुकुंद गदाधर और एक दूसरे कोई ब्रह्मा के से चैतन्य भागवत में रखा है ब्रह्मानंद, लेकिन चैतन्य चरितामृत में उससे नाम रखा हुआ है जगदानंद पंडित बा कोई भी किसी को नाम चार लोग को बताया, लेकिन इसमें से ये थे कौन गदाधर पंडित। माँ को बाद में बताए लेकिन गदाधर पंडित कहे कि मैं संन्यास गदाधर मैं शरीर के बाल मंडन करके पूरे शिखा सूत्र त्याग दूंगा, उनमें उस महीने में केवल मायावाद सन्यासी प्रचलित था विशेष रूप में समाज में, तो इसलिए मैं सन्यास लेके घर बार छोड़ के चले जाऊंगा। गदाधर कहे कि क्या ये क्या करे, क्या गृहस्थ आश्रम में रहने से कोई भगवान नहीं मिलते हैं, कृष्ण नहीं मिलते, केवल सन्यास लेने से ही मिलेंगे, ये क्यों घर बार छोड़ के जाना है। लेकिन महाप्रभु में तो सन्यास लूंगा संकल्प ले लिया हूं, तो इसलिए बाध्य होकर फिर बोले आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, मैं आपके बारे में क्या बोलूं कि उन्होंने इसलिए आप जो सन्यास लोगे तो मैं कहां आपको रुक सकता हूं। तो महाप्रभु आस्ते आस्ते के जाकर कटवा में सन्यास ले लिए, कहां से सन्यास लिए केशव भारती से सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए, लेकिन डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। तो उनके नित्यानंद प्रभु तो गंगा को जमुना कहे कि इनको शांतिपुर ले आए, शांतिपुर से ही फिर कहाँ गए पुरी आ गए, पुरी में जब महाप्रभु आते थे उनके साथ में फिर आए कौन गदाधर लेके आए, महाप्रभु गदाधर को लेके आए। तो गदाधर पंडित जब पुरी में पहुंचे तो इनको चैतन्य महाप्रभु ने वो एक स्थान दिया दूर में, कहाँ पर आज भी जो जहाँ पर टुला गोविनाथ मंदिर है जमेश्वर तोटा उस एरिया को कहते जमेश्वर तोटा, वहीं पर तोटा ने इसलिए वहीं स्थान पे गदाधर पंडित को स्थान दिए। लेकिन प्रत्येक दिन महाप्रभु गदाधर पंडित के पास में जाते थे, किसके लिए भागवत श्रवण करने के लिए है। रामानंद कृष्ण कथा स्वरूपेर गान विरह वेदनाते प्रभुर राखये पुराण। लेकिन इनके ये लोग तो आके पास में गाते थे, पास में कथा सुनाता था बैठ कर रामानंद आके गंभीरा में, लेकिन भागवत सुनने के लिए वो जाते थे स्वयं किसके पास, गदाधर के पास, इतने दूर हैं डेली जाते थे। गदाधर पंडित भागवत की पंडित है, राधा रानी के अवतार हैं, और उन्हीं के पास में गदा महाप्रभु जाकर भागवत प्रत्येक दिन श्रवण करते थे। तभी साधन चैतन्य महाप्रभु दसम भागवत दसम स्कंद भागवत में ध्रुव तो उस समय महाप्रभु भाग भाग के आ रहे, चैतन्य महाप्रभु पर भाग भाग के पहुंचे आके, बोले कि ये क्या का विचार कर रहे हो हैं गदाधर, हैं आमी के नहीं निमंत्रण और भीतर, मैं कि तुम्हारे निमंत्रण में नहीं हूँ, हैं क्या कर रहे हो, तुम दोनों से मैं अभिन्न भिन्न नहीं हूँ, भिन्न मैं तुम दोनों से अलग नहीं हूँ, हैं नित्यानंद तंडुल जो चावल लाया और रंधन कौन किया, गदाधर रंधन किया, नित्यानंद के चावल और गोपीनाथ खाए, गोपीनाथ को प्रसाद लगा, इसमें मेरा भाग है वहां पर, कोई मेरा ही भाग है, मुझे न होते कि कैसे तुम खा लोगे। दोनों हंसने लगे, फिर नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु तीनों पता डाले हैं, इसलिए जैसे शांतिपुर में तीनों लोग बैठकर खाए थे साथ में, कौन, तीनों प्रभु गौर निताय और अद्वैत है, यहाँ पर ये तीनों साथ में बैठकर खाए, नित्य गौरांग महाप्रभु, गदाधर पंडित और गौर निताय गदाधर हैं, तीनों बैठकर फिर वही अन्न को सब बांट लिए और जो साग है उससे फिस्ट, मतलब ऐसे जो आप जो आस्वादन प्रसाद का महाप्रभु ये प्रसाद जो आस्वादन में कर रहा हूँ, ये जो कुकिंग है मैं नहीं लग रहा है कि भौतिक जगत का कोई कुकिंग है, मुझे लगता है ये स्वयं लक्ष्मी ठाकुर ने इसको कुकिंग किया है। गदाधर क्या तुम्हें वैकुंठ में रहते हो क्या, तुम्हें तुम ही लक्ष्मी हो, ऐसा कहा कि महाप्रभु ने कहे, सब हंस रहे थे नित्यानंद प्रभु हैं। तो इसी प्रकार वहाँ पर बैठ के तीनों गदा भोजन भी किए थे, बहुत कुछ लड़ा है वहाँ पर है। गदाधर पंडित थोड़े जब वृद्ध होने लगे, इनको आज गोपीनाथ, गोपीनाथ तो बड़े खड़े थे शुरू से, जो विग्रह थे खड़े थे पूरे 7 फुट लंबे ऐसे पूरे विग्रह खड़े थे, माला चढ़ाने में इनको दिक्कत हो रहा था है। थोड़ा कुबड़ थोड़ा ऐसे नीचे आ गया तब तो माला नहीं पर प्लान की गया, कल से मैं दूसरा पुजारी कोई अच्छा पुजारी है माला फला बना दो, पुजारी के द्वारा वो उनको पहनाऊंगा माला, अभी मेरे से नहीं हो पा रहा। भगवान स्वप्न में कही गोपीनाथ को कि गदाधर मैं तुम्हारी हाथ से ही माला लेकर प्रसन्न होता हूँ, और तुम यदि मैं ऐसे खड़ा रहने से तुझे माला पहनाने दिक्कत हो रहा, मैं बैठ जाता हूँ। आगे देखे अल्टर खुले देखे बैठे हुए, माला फिर आसन से उनको पहनाया है, अभी इसलिए बैठे तो बैठे बस हैं, पद्मासन में गोपीनाथ बैठे हुए हैं। फिर गोपीनाथ कहते कि सनातन गोस्वामी कहते ये साधारण गोपी नहीं, वो नहीं है विग्रह, साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण साधारण साक्षात मदन मोहन है, मदन गोपाल गोपीनाथ प्रयोजन विग्रह हैं, बैठे हैं बांसुरी धारण करके है, जिनमें स्वयं गौरांग ही अंतर्हित हुए हैं इसी विग्रह में है। और इसलिए आज ये जो इनके तिरुभाव तिथि गदाधर पंडित के, हम उनकी भी विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, वो भी हमको थोड़ा कृपा, यदि उनकी कृपा होगा तो अभी फिर गोपीनाथ मिल जाएंगे। किसकी कृपा है, भक्ति ठाकुर गोपीनाथ के बारे में 3-3 भजन लिखे हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मनि वेदन सुन, अमित दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुन। मैं वही गा नहीं कह रहा हूँ सब ठीक है। इसी प्रकार आप दोनों महान आचार्यों के आज तिरुभाव तिथि पर हम उनके भी कृपा की रचना करते हैं, फिर मंदिर में फिर वहाँ पर वैष्णव भोजन होगा 10 बजने वाला, तो यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।